نحمده ونصلي على رسوله الكريم.
أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. سبق نمبر 247، آیت نمبر 1 سے 62، سورۃ النجم. لیسن نمبر 247، آیت نمبر 1 to 62، سورۃ النجم. چند باتیں سورۃ کے بارے میں، پھر ان شاء اللہ تعالیٰ ہم اس کو دیکھیں گے تفصیل کے ساتھ. سورۃ نجم ترتیب کے اعتبار سے 53 یعنی 53 نمبر کی سورۃ ہے. اس سے پہلے 52 سورتیں ہم پڑھ چکے. سورۃ کا نام ون نجم پہلے ہی لفظ سے ہے. یہ سورۃ کب نازل ہوئی اس کے بارے میں اختلاف ہے. صحیح بخاری، مسلم اور چند اور روایات میں سے یہ ملتا ہے کہ یہ پہلی وہ سورۃ ہے جس میں سجدہ آیا، اور یہ ان سورتوں میں پہلی سورۃ ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجمع عام کے سامنے پڑھ کے سنائی. اس سے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ بالکل 5واں سال تھا نبوت کا اور ابھی نیا نیا دور تھا. ایک واقعہ آئے گا، وہاں ہم اس پہ تھوڑی سی مزید بات کر سکیں گے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سورت پڑھی تو مکہ والوں پہ اتنا وجد طاری ہوا کہ اس میں آیت سجدہ پر انہوں نے بھی سجدہ کر لیا. جو ہی انہوں نے سجدہ کیا تو فوراً مسلمانوں میں یہ خوشی کی خبر پھیل گئی کہ مکہ والے مسلمان ہو گئے. یہی خبر حبشہ والوں تک پہنچی جو مکہ والوں کے ظلم و ستم سے تنگ آ کر ہجرت کر چکے تھے، تو وہ اس خوشی میں کہ اب واپس چلتے ہیں کیونکہ مخالفت تو ختم ہو گئی. واپس آئے، پتہ چلا کہ خبر جھوٹی تھی اور پھر ان پہ ظلم و ستم کے پہاڑ ٹوٹے. ایسے لگتا ہے کہ خوشی غم کے ساتھ اللہ تعالیٰ ایمان والے کے دل کو کبھی پگھلاتا ہے، کبھی سخت کرتا ہے، کبھی جماتا ہے تاکہ اس کے اندر جذب کی کیفیت ہو. اسی صورت میں معراج کے موقع پہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معاملہ تھا اس کا تذکرہ، اس کو سامنے رکھیں تو وہ واقعہ 10 نبوی کا ہے، یعنی مکی دور کا آخری دور ہے. اس لیے زیادہ بڑی بات جو لگتی ہے اس میں وہ یہ ہے کہ یہ 10 نبوی میں نازل ہوئی. ہاں، اگر اس میں 5 نبوی والا وہ واقعہ ٹھیک ہے، کیونکہ اس کی سنت میں بھی کچھ لوگوں کو اعتراض ہے، تو ہو سکتا ہے کہ وہ پھر اس میں اس کا تذکرہ کیا ہو. پھر اگلی بات ہے کہ دلچسپ چیز دیکھیے کہ پچھلی سورت سورۃ طور کا آخری لفظ کیا تھا، وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَإِدْبَارَ النُّجُومِ، اور رات میں اس کی تسبیح کیجئے اور خاص طور پہ ستاروں کے پلٹنے کے وقت. تو وہاں تھا لفظ نجوم. سورت شروع ہوتی ہے نجم سے، اور نجم ستارے کو کہتے ہیں. کس طرح سے اس کو ہم انشاءاللہ تعالی اس کی تفصیل میں دیکھیں گے. پھر اسی طرح اس سورت کو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ والوں کے سامنے پڑھا تو ابن مسعود فرماتے ہیں کہ میں نے خود دیکھا کہ سب نے سجدہ کیا ایک شخص کے سوا، اور اس کا نام تھا امیہ بن خلف. اس نے زمین پہ جھکنے کی بجائے، یعنی تکبر کے مارے، ہاتھ میں مٹی لے کر اس کو اپنے ماتھے پہ لگا لیا، اور پھر بعد میں ہم نے دیکھا کہ وہ کفر پر مرا. یعنی اللہ تعالیٰ پہلے سے ہی کچھ اسباب جو ہے وہ پیدا کر دیتے ہیں جس سے پتہ چل جاتا ہے کہ کوئی انسان آنے والے وقت میں کیا کرے گا. اس سورت کا بنیادی مضمون جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار پر لگا ہوا یہ دھبا کہ آپ نے یہ قرآن خود لکھ لیا، آپ اپنی مرضی کی باتیں کرتے رہتے ہیں، تو اس سے پتہ چل رہا ہے کہ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، اس سورت کا ایک بہت ہی بڑا بنیادی مضمون ہے. آپ کہہ سکتے ہیں کہ سورت نجم کیا ہے؟ یہ ایک انوکھا سفر ہے جو آسمانی سفر دنیا کے سب سے عظیم انسان کو کروایا گیا، اور اس سفر کی روداد ہم انشاءاللہ اس سورت میں پڑھیں گے. اور بعض دفعہ انسان بالکل اپنے آپ کو اسی جگہ پہ محسوس کرتا ہے کہ جہاں پہ وہ موجود ہے. پھر اسی طرح ان کے بتوں کی بے بسی، اس کو بھی ثابت کیا گیا، اور کس طرح سے شرک انسانوں کی عقلوں پر پردے ڈال دیتا ہے کہ اچھی بھلی بات ان کو سمجھ نہیں آتی، اور اس طرح کی باتیں کرتے کراتے لوگ پہنچتے ہیں. اور مکی صورتوں کی طرح توحید، وحی کی صداقت، رسالت، آخرت اور عقیدہ شرک کی کمزوری اس صورت کے بنیادی مضمون ہے. انشاءاللہ تعالی ہم صورت کے ساتھ ساتھ ان چیزوں کو دیکھیں گے، اور خاص طور پہ اس میں پھر لوگوں کے رویوں کی وجہ سے ان کے ساتھ بیہیو کیسے کریں، یہ اس صورت سے ہمیں بہت خوبصورت طریقے سے پتہ چلتا ہے. کیونکہ دین پہ آنے کے باوجود بھی ہمیں یہ نہیں سمجھ آ رہا ہوتا کہ لوگوں کے ساتھ کیسے معاملہ کریں، کس پہ اعتبار کریں، کس پہ نہ کریں، تو وہ چیزیں پھر ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ان واقعات سے پتہ چلتی ہیں. शुरू करते हैं। अंदाज कुछ इसी किस्म का रखेंगे कि पहले एक दफ़ा हल्की सी वजाहत के साथ एक मजमून को पूरा कर लें, फिर जब वो पूरा हो तो उसमें जो अमल की बातें उसको देखेंगे। ख़ास तौर पे जो शुरू की 25 आयतें हम पढ़ेंगे, जो पहला रुकू है, इनको पढ़ने के तीन मकासद जहन में रखिएगा। नंबर एक, हद से भड़ने से बचने की कोशिश करनी है, यानी जिसको आप कह सकते हैं हदों पे जाना। दूसरी चीज़, ख्वाहिशात नफ्स की पैरवी करने से बचना है इंशाल्लाह। और तीसरी, वहम व गुमान की पैरवी करने से बचना है। ये जो मकासद होते हैं ना, ये बंदे को बांध के रखते हैं। आप पूरा वक्त फिर अपना मुहासबा करते हैं कि जो बात मैंने कही, जो सुनी, जो पढ़ी, क्या मैंने उसके अंदर से वो चीज़ पा ली जिसके लिए मैंने ये किया था। तो आइए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वन्नज्मि इज़ा हवा, कसम है तारे की जब के वो गरूब हुआ। ये कसम है। जवाब क्या है? मा दल्ला साहिबकुम व मा गवा, तुम्हारा रफीक ना तो भटका हुआ है और ना बहका हुआ है, बल्कि क्या है? इन हुवा इल्ला वहयुन यूहा, मगर ये तो वही है जो उसकी तरफ की जाती है। किसके जरिए से? अल्लमहु शदीदुल कुवा, इसे पूरी ताकत वाले फरिश्ते ने सिखाया, यानी जिब्राइल। कैसे? ज़ू मिर्रतिन फस्तवा, फिर वो सीधा खड़ा हो गया। वहुव बिल उफ़ुक़िल आला, और वो बुलंद आसमान के किनारों पर था। कौन? जिब्राइल अलैहिस्सलाम। फिर क्या हुआ? ثم دنا فتدلى, फिर वो नज़दीक हुआ और उतर आया। कितना? فقاب قاب قوسين او ادنى, बस वो दो कमानों के बकदर फासला रह गया, बल्कि इससे भी कम। फिर क्या हुआ उसके बाद? فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ, फिर इसने अल्लाह के बंदे को वही पहुंचाई जो भी पहुंचाई। और ये सच था, क्योंकि मा कज़ब अल-फुआद मा रआ, दिल ने झूठ नहीं कहा जिसे पैगंबर ने देखा। लेकिन तुम्हारा हाल क्या? अफतुमारूनहु अला मा यरा, क्या तुम झगड़ते हो इस पर जो पैगंबर देखते हैं? वलकद राहु नज़लतन उख्रा, उसने तो एक और मर्तबा भी उसको देखा था। कहाँ? इंद सिदरतुल मुंतहा, सिदरतुल मुंतहा के पास। कहाँ है सिदरतुल मुंतहा? इंदहा जन्नतुल मावा, इसी के पास तो जन्नतुल मावा है। अब आगे इमेजिन करें आप, कैसी है ये जन्नतुल मावा? इज यक्ष सिदरतमा यक्षा, जबकि सिदरा को छुपाए लेती थी वो चीज़ जो छुपा रही थी। सिदरा जन्नत का एक दरख्त है, और ये सारा मेराज के मौके का वाक्या हमारी आंखों के सामने रखा जा रहा है। माज़ागल बसरु व मा तगा, ना तो निगाह बहकी ना हद से बड़ी, बल्कि लकद रा मिनायति रब्बिहिल कुबरा, यकीनन इसने अपने रब की बड़ी बड़ी निशानियों में से बास निशानियां देख ली। यहाँ तक 18 आयात है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सफ़रे मेराज का दूसरा हिस्सा इन आयात में मज़कूर है। सूरत बनी इसराइल के आगाज़ में आपसे अर्ज़ किया था कि नबी सल्लम को जो मेराज दिखाई गई नबूवत के 10वें साल में, उसके दो हिस्से थे। पहला सफ़र का हिस्सा आपका बैतुल्ला से बैतुल मक़दस तक था। ये ज़मीनी सफ़र था। बुर्राक पर आप बिठाए गए और एक जगह से दूसरी जगह गए। इसको असरा कहते हैं। रात के वक्त वो सफ़र शुरू हुआ था और रात ही के वक्त पूरा हुआ। इसके बाद बैतुल मक़दस में नमाज पढ़ने, अंबिया कराम से मुलाकात करने, उनके साथ कुछ इस तरह की बातों के करने के जिसका इस वक्त मौका नहीं, ज़रूरत नहीं। उसके बाद नबी सल्लम को आसमानों की तरफ ले जाया गया, बुराक पर बिठाया गया और जिब्राइल आपके साथ थे। तो बैतुल मक़दस से लेकर सिदरतुल मुंतहा, या जहाँ तक भी अल्लाह अपने नबी को ले गए, उस सफ़र को मेराज कहते हैं। और आपने आयात को सुना, इसके अंदर उसी सफ़र का तज़किरा है। लफ्ज़ों को देख लेते हैं। वन नजमी इज़ा हवा, नजम का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है। सितारे को कहते हैं, बूटियों को भी कहते हैं, दरख्तों को भी कहते हैं। अब ये कौन सा है यहाँ, इससे क्या मुराद है? कहते हैं कि इससे सुरैया सितारा मुराद है। कुछ लोग दौरे जाहिलियत में इस सितारे की पूजा करते थे। और लफ्ज़ नजम जो है ना, ये वाहिद भी है, मोनस भी है, जमा भी है, वाहिद भी है, यानी इसम जिन्स है। तो आप कसम है सितारे की कह सकते हैं और कसम है सितारों की, दोनों तरह ठीक है क्योंकि इसमें वाहिद जमा का फ़र्क नहीं है। इस सितारे के नाम के साथ सुरैया का लफ्ज़ ही मक्का वालों के कल्चर में था। बास ने जोहरा सियारे की बात भी की, लेकिन बात यह है कि कोई भी सितारा मुराद है। हवा का लफ्ज़ ऊपर से गिरना, इससे मुराद है गरूब होना। इजा जब जिस वक्त, मुराद ये कि तुलुए सुबह के वक्त जब सूरज निकलता है तो सितारे डूबने लगते हैं ना, बस वही बात है कि वन नजम इजा हवा, और जब सितारा गिरा या उस वक्त की कसम जब सितारे गिरे। बस कहते हैं कि सितारों के गिरने से मुराद रुजूमल लिशयातीन भी है, जो सूरत मुल्क में हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह ताला, कि जब आसमानों पे जाने की कोशिश करते हैं शयातीन तो ऊपर से शोला पड़ता है तो जो सितारा टूटता है उसको भी यहाँ पे मुराद लिया गया है। और कोई भी हो, सारी बातें ही ठीक होती हैं, इससे कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। कसम बहुत बड़ी है बहरहाल, और एक ही कसम है। पिछली सूरत में हमने देखा कि बहुत सारी कसमें थी, लेकिन बस एक छोटी सी कसम खा के फरमाया मा दल साहिबुकुम वमा गवा, तुम्हारा साहिब को भटका हुआ थोड़ी। यहाँ लफ्ज़ साहिब साहिबा से है, सोहबत का लफ्ज़ भी इसी से है। अरसा दराज तक किसी के साथ रहना, इसको सोहबत कहते हैं। कहते हैं ना अच्छी सोहबत, थोड़े अरसे के लिए नहीं होता, जैसे आप बस में बैठे उठ के चले गए, ट्रेन में बैठे चले गए। सोहबत ऐसे जैसे आप पिछले एक साल, सवा साल, डेढ़ साल से आप यहाँ मौजूद हैं, ठीक है। इसी तरह ये सोहबत इंसान की इंसान से भी हो सकती है और इंसान की जानवर के साथ भी हो सकती है। जुबानी और मकानी दोनों तरह की सोहबत हो सकती है। मसलन आप यहाँ बैठ रहे हैं तो भी आप एक दूसरे के साहिब हैं, आप सिर्फ कंप्यूटर से क्लास ले रहे हैं जैसे पेलटॉक पे लोग लेते हैं, तो बैठा हुआ तो नहीं कोई देखता, लेकिन रोज़ उनको देखना, आईडीज़ को देखना, उसको भी सोहबत कहते हैं। जबान और मकान दोनों से इसका ताल्लुक नहीं है। इशारा है नबी सल्लम की तरफ, क्या मक्का वालों कुछ तो शर्म करो, कोई अजनबी शख्स है तुम्हारे पास? 40 साल से तुम इस शख्स को देख रहे हो, उठते बैठते खाते, तुम्हारे बीच का एक शख्स है, इसको सादिक और अमीन तुम कह चुके, इसकी बातों पे यकीन तुम कर चुके, इसको हल्फुल फसूल के मौके पे सालिस तुम बना चुके, इसके मशवरे से एक बहुत बड़ा झगड़ा हजरे अस्वद की तनसीब का रुक गया, आज तुम्हें ये शख्स दीवाना लगता है, भटका हुआ लगता है, तुम्हें क्या हो गया, कैसी बातें करते हो? और आप देखिए कि साहिबुकुम, कुम कौन है यहाँ, कुरैश मक्का, असल लफ्ज़ इस्तेमाल किए गए, साहिब रफीक साथी, पास बैठने उठने वाले सबको। इस मुकाम पर आपका नाम नहीं लिया, हमारा रसूल नहीं कहा, बल्कि तुम्हारा साहिब कहा। क्यों? मक्का वालों को एहसास दिलाया जा रहा है कि जिसकी मुखालफत कर रहे हो ये तुम्हारे ही गिरोह का बंदा है, ये तुम्हारा अपना है। तुम किस तासुब में पड़ गए कि अपने बंदे को गैर कहते हो? कोई अजनबी है, कोई जान पहचान नहीं, तुम्हारी कौम का बंदा, तुम्हारा बच्चा बच्चा इसको जानता है, इसका किरदार, इसकी सीरत वाज़ेह है, इसके मामलात देख लो, अपना तजुर्बा देख लो, इसके साथ इसने तुम्हारे साथ कैसे डीलिंग की, इसकी आदत देखो, इसकी ज़िंदगी देखो। आज मुँह फाड़ फाड़ के इसके बारे में हज़ारों बातें करते हो, कभी बताओ कि कभी एकदम ऐसा हो सकता है? मादल्ला, हरगिज़ नहीं। अब यहाँ देखिए कि नबी सल्लम के लिए लफ्ज़ दल्ला आया, इससे थोड़ी सी बात तल्ख हो जाती है। कुछ लोग माइंड करते हैं कि क्या नबी सल्लम भटके हुए हैं, तो हम देखते हैं कि अरबी में दल्ला का लफ्ज़ किस चीज़ के लिए आता है। दुआत लाम लाम, ये वही लफ्ज़ है जो गैर अलमखदूब अलैहिम वलद्दालीन में भी आती है। तो दालीन का लफ्ज़ दलल, किसी चीज़ को ना जानने की वजह से भटक जाना, लाइलमी की वजह से। एक वो होता है कि जानते बूझते भटक गए, सब कुछ पता था, रास्ता जान के आप गलत रास्ते पे ले गए किसी को तंग करने के लिए। दूसरा ये कि आपको पता भी नहीं रास्ता, ना आपने कोई दावा किया, कोई फिर भी कहता नहीं 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 चलो बताओ रास्ता। अब अगर आप फिर इस तरह से जाएंगे तो फिर आपका तो कसूर नहीं, गलती उनकी है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के भटकने से मुराद यहाँ क्या बता दिया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ये इल्ज़ाम कि वो गुमराह हो गए, वो भटके हुए हो गए। देखिए लफ्ज़ गुमराह को आप तोड़ के लिखें, गुम پلس راہ، وہ جس نے راہ کو گم کر دیا. تم کہتے وہ گمراہ ہیں، اللہ کہتے ہیں ستاروں کی قسم رات کے اندھیرے میں جیسے ستارے بالکل ٹھیک کنارے پہ آتے ہیں نا، جگہ نہیں بھٹکتے، اس طرح اس نبی کو بھی جو اللہ نے بات کہی ہے وہ اس سے نہیں بھٹکا ہوا. سمجھ آ رہا ہے ستارے کی بات سے؟ رات کے اندھیروں میں ایک ستارہ چمکتا ہے تو افق پہ نمایاں ہوتا ہے. اس طرح یہ نبی بھی ایک ایسا علم لے کے آیا تمہاری زندگیوں میں جو ہدایت کا ستارہ بن گیا. کتنے دھندلے چھڑے ہوتے ہیں، کتنے اندھیرے ہوتے ہیں، اور اس اندھیرے میں ایک چھوٹا سا ستارہ اتنی روشنی کر دیتا ہے. یہ نبی تمہیں جو کلچر دے رہا ہے، یہ نبی جو لائف سٹائل دے رہا ہے، تمہاری اندھیروں والی زندگی میں یہ روشنی کی پہلی کرن ہے. اب دیکھیے، جب اندھیرا ہوتا ہے نا تو بندہ غلط فہمی کا شکار ہوتا ہے. مثلا دور سے ایک درخت کو کوئی دیکھے اندھیرے میں، کیا سوچ سکتا ہے؟ یہ کوئی بھوت ہوگا. کہیں رسی پڑی ہو، کہے گا یہ سانپ ہوگا. ریت سے کوئی چٹان ابھری ہو تو ایسے لگے گا کوئی درندہ بیٹھا ہوا ہے. لیکن جو ہی صبح آتی ہے، ستارہ ڈوبتا ہے، تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ صبح نمایاں ہوتی ہے نا، اس کے بعد ہر چیز اپنی اصل میں آ جاتی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ یہی بتا رہے ہیں کہ اس نبی کی زندگی شخصیت تم سے چھپی بھی نہیں، روزے روشن کی طرح ہے، اور جس دعوت کی طرف تم کو یہ بلا رہا ہے وہ راستہ روشنیوں کا راستہ ہے، اندھیروں کا راستہ نہیں، وہ نور کا راستہ ہے. پھر بھی تم الزام لگاتے ہو، کیا سوچتے ہو کہ یہ بندہ اپنی مرضی سے باتیں کرتا ہے؟ قوما ينطق عن الهوى، یہ اپنی مرضی سے تو باتیں نہیں کرتا. تم اس پر جو الزام لگاتے ہو کہ راستے سے بھٹک گئے، یہ باتیں اس نے دل سے نہیں گھڑی. دیکھیے، ایک وجہ ہوتی ہے دل سے بات گھڑنا، خود ہی بیٹھ بیٹھ کے باتیں بنائی اور سنا دی آ کے، اور دوسری ایک وجہ ہوتی ہے خواہش نفس. کوئی اپنے آپ کو بڑا بنانا چاہتا ہے، کوئی اپنے کسی خاص عقیدے کو واضح کرنا چاہتا ہے، کھولنا چاہتا ہے. یہ دونوں باتیں نہیں تھیں، یہ تو اللہ کی طرف سے ہے، وہی کے ذریعے سے بات کی جا رہی ہے. ان ہوا اللہ وحی یوحا، اللہ نے بھیجا ہے، کوئی مذاق تھوڑی ہے. یہ باتیں کوئی خود سے کر سکتا ہے؟ غیب کی باتیں، جنت جہنم کی باتیں، دنیا کے آنے والے وقت کی باتیں کیا کوئی بتا سکتا ہے؟ اس سے پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ علم اور رشد پر مبنی ہے، جہالت پر نہیں. ہم کسی بھٹکے ہوئے رسول کے امتی نہیں ہیں، نعوذ باللہ، ثم نعوذ باللہ، ہم کسی رنگیلے رسول کی امت نہیں ہیں، ہم کوئی شیطانک ورسز کے بلونگنگ پروفٹ کے نبی نہیں ہیں. ہمیں جو دین ملا وہ صاف روز روشن کی طرح اللہ کی طرف سے، اس کا سورس اوپر سے ہے، اس کے اندر کسی کی خواہش کی کوئی ملاوٹ نہیں. اور ایسا دین جب بھی آتا ہے، اس کی ایک علامت نوٹ کر لیں، جب بھی سچا دین آئے گا جس میں کسی کی خواہش نہیں ہوگی، کوئی تعصب نہیں ہوگا، کسی کو کسی عقیدے کو واضح کرنا لازم نہیں ہوگا، تو اس میں اٹریکشن بہت ہوگی. نمبر ایک، یعنی آپ کو سوال اس طرح بنا کے دیتی ہوں، کیسے پتہ چلے کہ سچا دین ہے کہ جھوٹا؟ کسی کا، ہر بندہ بازار میں بیٹھ کے اپنی چیز بیچ رہا ہے، کیسے پتہ چلے اصلی بیچ لے کہ نکلی؟ نمبر ایک، اصلی دین کی طرف طبیعت کھنچتی ہے. اس کو وہاں جو میں نے پیچھے بات کی تھی، دوبارہ دہرا دیتی ہوں کہ ہماری جو روحیں ہیں یہ آسمان سے آئی ہیں، جسم مٹی سے بنا ہے. ہماری روح آسمان سے آئی ہے، اس دنیا میں جب ہمارے جسم میں رہتی ہے نا تو یہ بڑا بیگانگی فیل کرتی ہے، اجنبی ہے، جیسے نئے ملک میں آ کے کچھ دن انسان محسوس کرتا ہے. اس کو کوئی ہم جولی چاہیے، کوئی ہم وطن چاہیے. آپ سوچیں، آپ ناروے میں آئے، آپ اکیلے تھے پہلے، کوئی آپ کو نہیں ملا، دور سے آپ کو کوئی پاکستانی کپڑوں میں کوئی اردو بولتا ہوا دکھے، تو اس وقت آپ کا دل کیا کرتا ہے کہ اس بات کرو، محبت ہوتی ہے نا. بہت سارے لوگ جہاں ہوتے ہیں وہاں نہیں پتہ چلتا. آج بھی ایسی اسٹیٹس ہیں امریکہ کی کہ جہاں وہ کسی اپنے پاکستانی کو دیکھ لیں تو ان کو ایسے لگتا ہے کہ جیسے ان کو کوئی ہیرا مل گیا. اب ہماری روح آسمان سے آئی، اس دنیا میں اس جسم کے بت پہ وہ قیدی ہے، اپنے آپ کو مشکل میں کرتی ہے. اتنے میں وحی الہی کی بارش ہوئی تو اس کو لگتا ہے کہ یہ میری ہم وطن ہے، ہم بھی وہیں سے آئے ہیں جہاں سے وحی آتی ہے. تو اس وحی کو بہت کشش محسوس کرتی ہے ہماری روح، یہی وہ کیفیت ہے جو قرآن سنتے ہوئے سناتے ہوئے ہمارے اوپر طاری ہوتی ہے. جیسے آپ کسی اپنے پیارے دوست سے بیٹھتے باتیں کرتے اچھا لگتا ہے نا آپ کو، قرآن کی محفل میں بالکل یہی ہو رہا ہوتا ہے، یہ ہماری روح اس دوسری روح وحی کی روح سے باتیں کر رہی ہوتی ہے. اور سناؤ کیا حال ہے، بے چین ہے. پھر آپ دیکھیے کہ اپنا پیارا ملتا ہے تو دل کیا چاہتا ہے کہ اب اس کے ساتھ ہی چلے جائیں، اجنبیت سے ڈر لگتا ہے. یہ ہے ایک ایمان والے کی موت، ईमान वाले की मौत असल में इस रूह का वापस अपने वतन पे जाना है। या ये तो हन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजी इला रब्बी की, ये लफ्ज इरजी बता रहे कि पहले ऊपर थी, वापस फिर ऊपर जा रही है। ईमान वाले के लिए तो वैसे ही है कि जैसे कि जब हम नॉर्वे का कोई बंदा जो सारी ज़िंदगी कोई लड़की कोई औरत यहीं पली बड़ी सब इसी कल्चर की आदि, कोई उसको पाकिस्तान के किसी गांव में ले जाए जहां उसको पानी भी नहीं अच्छा लग रहा, गंदगी और जो भी हो सकता है वर्स्ट, हालांकि ऐसा हमेशा होता नहीं लेकिन वर्स्ट सोच ले। अब वो औरत किसी मजबूरी में वहां बैठी हुई है, एक एक दिन उसके लिए दोबर है ना, उसको हर चीज़ तो फ़र्क लग रही है, अजनबी है, मट्टी मट्टी मट्टी, वो एक काला साफ सुथरे माहौल की आदि थी। अब आप सोचिए जितने दिन वो वहाँ रहेगी, वो मजबूरन में रह तो लेगी लेकिन इस्तराब होगा। इधर रुक के पहले सोच ले, ये कैफियत उस इंसान की है जो अपनी रूह को अपने आप को गंदे कामों में लगा देता है इस दुनिया में, मटीरियलिज्म मादा परस्ती दुनियादारियाँ शादियाँ खाने पीने। उस वक्त ईमान वाला बिल्कुल ऐसे महसूस कर रहा होता है जैसे कोई नॉर्वे का किसी छोटे से गांव में चला गया, बोझ महसूस होता है उसको। ईमान वाले को कोई मज़ा नहीं आता बाजारों में शॉपिंगों में दावतों में इस तरह की चीज़ों में जहाँ सिर्फ ओल फोल है, कोई काम की बात नहीं है। अब जब उस औरत को कोई कहता है कि अच्छा साल दो हो गए चलो वापस, खुशी से आएगी कि ना खुशी से? वो तो लुडियाँ डालेगी ना कि मेरी जान छुटे मैं जाऊँ। तो ये लुडियाँ डालना ईमान वाले का, या ये तो है नफ्सुल मुतमइन्ना इरजी इला रब्बी की। ईमान वाला इस दुनिया में खुश नहीं होता। हदीस में आता है कि मोमिन की मौत उछलती कूदती खुशियां मनाती उसके जिस्म से निकलती है और दुआएं देके जाती है। अब इसको अपोजिट ले लीजिए, एक पाकिस्तान के गांव का कोई बिल्कुल जिसके पास कोई खाना पीना जॉब कुछ नहीं, किसी वजह से अमेरिका आ गया नॉर्वे आ गया, जहां मर्जी ले जाए आप, एक ही बात है। अब जब वो यहां से इधर आएगा उसका क्या हाल होगा? वाह बहुत अच्छा, अब उसको यहाँ कुछ अरसा रख के कहा जाए चलो वापस, अच्छा लगेगा उसको? ये है काफिर की मौत। वो दुनिया में इतना फन कर लेता है, इतना फन कर लेता है कि उसकी मौत में उसको पता है अब ये रूह मेरी दोबारा सिज्जीन के घड़ों में कैद होने वाली है। लौ ला खरतनी ला जलन करी ला लियाम अलुसालेहन फीमा तरक्तुकल्ला। ये मौत के फ़र्क है। इसी तरह याद रखिए कि जो रूह हमारी है ना इस वक्त मेरी आपकी, मैं जो बैठी हूँ ये मैं नहीं हूँ, मैं मट्टी से बनी हूँ, इसी मट्टी में चली जाऊंगी, लेकिन मेरे अंदर जो रूह है ना उसका जोड़ हो जाता है इससे इन हुआ इल्ला वहयुहा, तो वही की तरफ सच की तरफ रूह खिंचती है। दूसरी अलामत नोट कीजिएगा सच्चे दीन की, क्या कि उसके आगे ज़रूर मुखालफतें होंगी। ये तो आप कह सकते हैं ना कि जैसे दो गिरहें बांध के रख लें। हक बात में कशिश बहुत होती है लोगों को, जो सुनते हैं उनका दिल खिंचता है, वो हर कुर्बानी देने को तैयार हो जाते हैं। वो अकेले नहीं आते, वो दूसरों को भी उसके अंदर खींचते हैं खींचते हैं। आप पढ़ के देखें मक्की दौर, कोड़े थे, आज तो वो बात ही कोई नहीं, आज तो कोई कुरान भी पढ़ने आता है तो नरम कुर्सियों पर बैठता है। उस दौर में जब एक मुसलमान होता था तो वो मौत की कीमत थी, लेकिन चुपके चुपके अपने दोस्तों को लाते थे और सब यंगस्टर आए नबी सल्लम के पास। जितनी कशिश होती है ना वही में उतनी मुखालफत होती है। मुखालफत क्यों होती है? लोग कहते हैं ये हमारे हाथ से चले गए, फिर लोगों में बात मशहूर हो जाती है तो लोग कहते हैं कि ये जादू है और ये काहिन है और ये मजनू है और ये दीवाना है। अल्लाह ताला कहते हैं ये कुछ भी नहीं, ये मेरी वही का नूर है, ये सच की बात है। आप जो बातें करते हैं ये जुबान से नहीं करते, जुबान में कहाँ ताकत है कि इस गुलाम को बयान करे, किसी के दिल की बातें कैसे हो सकती हैं, ये अल्लाह की वही है। और आप अपने लिए लिख लें जो कैफियत कुरान पढ़ते हुए आपकी अल्लाह के कलाम को सुनते हुए होती है ना, इसको आप इन्फिनिट कर लें, हज़ारों लाखों गुना मल्टीप्लाई करें, यही कैफियत कल जन्नत में इंशाल्लाह अल्लाह के दीदार के वक्त आपकी होगी। आपको याद आएगा उस वक्त अपना ये कलाम पढ़ना कि अल्लाह हम ये तो कहीं जानी पहचानी है, फिर वहाँ आप सारे एक दूसरे के हाँ ये कुरान पढ़ते हुए होती थी, क्योंकि इन हुआ इल्ला वहयुहा, ये रब का कलाम है। बंदे का कलाम हो तो चार दिन ना कोई सुने, पांचवें दिन घर बैठ जाते हैं लोग। इस कलाम के साथ जो जुड़ता है वो तो गूंद की तरह चिपक जाता है, जैसे गम कहीं लग जाए तो उतरती नहीं है। ये कलाम तो इस तरह दिल पे असर रखता है क्योंकि ये अल्लाह का कलाम है और ये वाह चीज़ है। हदीस में भी वो बात नहीं है जो इस कलाम की वो बात है। लोग चार चार साल कुरान का कोर्स कर लेते हैं। जो दिल की कैफियत कुरान की क्लास में होती है वो हदीस में नहीं होती। उसमें मसाइल अच्छे लगते हैं, रगबतें अच्छी लगती हैं, कुछ बातें अच्छी लगती हैं। तो फरमाया कि ये क्या है, अल्लाह का कलाम है। दुआ करें कि हमारी जुबानों से अल्लाह हमेशा हक निकाले, क्योंकि ये जो यंतिक का लफ्ज़ है नुतुक से, नुतुक बोलने को कहते हैं, पीछे भी आप पढ़ चुके हैं यही लफ्ज़। और हवा ख्वाहिश को कहते हैं, ऊपर से नीचे गिरना। हवा ये ख्वाहिशात ना जब मैं नीचे गिराती हैं, इंसान अपने रुतबों से नीचे गिर जाते हैं, बाद छिछोरी हरकतें करते हैं ख्वाहिश की वजह से। छोटे बड़े बड़े इंसान बाद छोटी छोटी हरकतें करते हैं खाने पीने बोलने जागने में। तो नफ्स की तालीमात जो है वो इंसान को नीचे कर देती हैं। खुलासा क्या है कि नबी की तालीमात मनमानी ख्वाहिशात नहीं है। आपकी बातें क्या हैं, अल्लाह की तरफ से कलाम है, और आपकी ये बातें सीधी तरफ लेके जाती हैं। सूरह यासीन में हम पढ़ चुके कि इन्नका अला सिरात मुस्तकीम, एक और जगह था इन्नका तहदी अला सिरात मुस्तकीम। नबी की तालीमात आपकी बताई हुई बातें सीधी ज़िंदगी में ले जाती हैं। अब थोड़ी सी बात करते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अपनी हवा से नहीं बोलते थे, ख्वाहिश से नहीं बोलते, तो क्या आपकी हर बात वही थी? सवाल आता है ना। हमारे यहाँ एक तो बहुत गलत फहमी है, हम कहते हैं हदीस की 6 किताबें हैं, बुखारी मुस्लिम और सिया सित्ता जो भी है। फिर जहन में आता है कि अल्लाह के नबी बैठे होंगे, आओ बैठो लिख लो, खुदा के लिए किताब लिख दो। फिर आपने बैठ के सारी बुखारी की हदीसें लिखा दी, दूसरे दिन बैठे तो मुस्लिम लिखा दी, अगले साल तिर्मिज़ी की लिखा दी। ऐसा नहीं था। आपको अल्लाह ताला उम्र दे, मोहलत दे और तौफीक दे, इंशाल्लाह आपको हदीस पढ़ाएंगे। वो भी एक नया ही बाब खुलेगा आपकी ज़िंदगी पे। एक हैरत कम होती है कुरान पढ़ के, तो हदीस खोल के दूसरी शुरू हो जाती है। आप देखेंगे कि हदीसें जो पाइल्ड अप हैं, ये ऐसे नहीं है कि बैठ के कहो, जैसे मैं बोल रही हूँ और आप लिख रहे हैं। टीचिंग स्टाइल है, या एक जैसे आप कह सकते हैं कि तालीम और तदरीस है। हदीसें ऐसे नहीं है, हदीस नबी सल्लम की पूरी ज़िंदगी है। तो यहाँ एक बहुत ही अहम नुक्ता है कि क्या आपकी आम बातें भी वही होती थी? क्योंकि एक सहाबी थे हज़रत अब्दुल्ला बिन अमर, हर बात आपकी लिखते थे। किसी ने उन पर एतराज़ किया कि देखो अल्लाह के नबी इंसान है, कभी खुशी में होते हैं, कभी गम में होते हैं, कभी गुस्से में होते हैं, कभी ऐसी कोई बात ना निकल जाए उनकी ज़ुबान से जिसको तुम उनके नाम से मंसूब कर दो, तो हर बात ना लिखा करो। इस पर अल्लाह के नबी सल्लम को जब खबर हुई इस बात की, तो आपने फरमाया, उस ज़ात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, इस ज़ुबान से हक के सिवा कुछ नहीं निकलता। यानी आप हक में भी मजाक में भी झूठ नहीं बोलते थे, वो भी आपका सच ही होता था। इसी तरह लोगों ने आपसे कहा कि आप हमसे हंसी मजाक भी कर लेते हैं, तो क्या उसमें कोई झूठ तो नहीं होता? इससे पता चलता है आप हंसी मजाक करते थे। कोई हर वक्त रोना धोना ही दीन नहीं है कि आपको देख के लोग कहें कि आदम बेजार बैठे हुए, खुश तबई चादा पेशानी से होता ईमान वाला, हंसता हंसाता है, खिलता खिलाता है, खुश रखता खुश रहता है। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया कि ज़ुबान से हक के सिवा कुछ नहीं निकलता, यानी मैं हंसी मजाक भी आपसे करता हूँ तो मैं उसमें झूठ नहीं बोलता। तो लिहाजा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो ज़ुबान से कलाम बातें निकलती ना, उसको 5 हिस्सों में बांट सकते हैं। नंबर 1, सरासर कुरान का टेक्स्ट जो इस वक्त मेरे आपके सामने, अरबिक टेक्स्ट, यानी वन नजमी ज़ा हवा मा दल्ला साहिबुकुम व मा हुवा, और इसी तरह 6666 आयात। ये तो था कुरान का टेक्स्ट। दूसरी चीज़ें जो आपकी ज़ुबान मुबारक से निकलती थी, वो थी कुरान की तबयीन, बयान करना, जैसे आज एक्सप्लेन करते हैं, जिसको आप तफसीर कह सकते हैं। तीसरी आपकी बातें थी सहाबा कराम से मशवरे, कभी जंगों के, कभी अमन के, कहीं मीटिंग हो रही है, कहीं कोई डेलीगेशन गया हुआ। चौथा आपका नुतुक था कि लोग आपसे सवाल करते, या सलूना का की तरह आप इज्तिहाद के साथ अपने पिछले इल्म की बुनियाद पर जवाब देते। इसमें क्या होता था, अगर आपका जवाब दुरुस्त होता तो कुछ ना किया जाता, उसकी तस्दीक थी। कभी ऐसा भी हुआ, ऐसी मिसालें मौजूद हैं कि आपका जवाब दुरुस्त ना होता तो वही के ज़रिए फरिश्ते को भेजकर इस्लाह कर दी जाती थी। मसलन कर्ज के बारे में, जिहाद के बारे में, कुछ ऐसे मसले हमें मिलते हैं। पांचवी आपकी बातें थी रोज़मर्रा ज़िंदगी की, सोना जागना खाना पीना, इज़्दवाजी ज़िंदगी, बीवियों से ताल्लुकात। अब रह गई बात कुरान का टेक्स्ट, 100% अल्लाह की तरफ से था, एक एक लफ्ज़ जो बोलते थे आप वो 100% अल्लाह की तरफ से था। कुरान को बयान करना, 100% अल्लाह की तरफ से था। आप ये नहीं कह सकते कि जब अल्लाह के नबी ने किसी कुरान की आयत की तफसीर की है तो वो शायद सही हो गलत हो। सहाबा किराम से जब आप मशवरे करते थे बिल्कुल हक की बुनियाद पे होते थे। आपकी ज़ाती ज़िंदगी की जो बातें थी उसमें भी आपकी बातें सच थी। आप ज़रा कह के तो देखें। मैं कहती हूँ सिर्फ कल एक दिन जो गुज़र गया जो बिल्कुल हमारे करीब है, मेरे और आप में से हर एक क्या ये दावा कर सकता है? कल सुबह उठने से लेकर रात तक मैंने जितनी बातें की वो बिल्कुल हक थी। कुछ एक जुमला, एक लफ्ज़, एक कलमा मैंने अपनी ज़ुबान से खुद नहीं बोला जो बेकार हो। हम तो ऐसा नहीं कर सकते, लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हर जुमला दुरुस्त था, बिल्कुल नपावा। बीवियों के साथ बात करते वो बातें आज हदीस का हिस्सा बन चुकी हैं। ये बहुत बड़ा मुकाम था जो अल्लाह के नबी को मिला। इस पर बहुत लोगों ने हसद किया। नबी सल्लम इस चीज़ में नंबर वन है पूरी दुनिया में, मुस्लिम नॉन मुस्लिम। कौन से? वो शख्स जिसकी बातों को लिखा गया। बड़े बड़े मुफक्किर गुजरे, नेपोलियन गुजरा, शेक्सपियर गुजरा, अदीब गुजरे, शायर गुजरे, किसी की बातों को इतनी अहमियत नहीं दी गई जितनी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दी गई। आज भी आपको पता है कि साइंसेस, जिसको आप साइंस का लफ्ज़ बोलते हैं ना, हमारे जहन में लफ्ज़ साइंस पढ़ते ही क्या आ जाता है, ये कायनात के राज। आज भी सबसे बड़ी साइंस हदीस साइंस है। जो लोग डिग्रीज लेते हैं ना, आज भी नॉन मुस्लिम भी हदीसों में डिग्रीज लेते हैं, आपको पता है, लेकिन ईमान नहीं है। और नबी सल्लम की अहादीस पे रिसर्च और काम करना, इसको आज पूरी दुनिया के अंदर एक डिग्री के तौर पे माना जाता है। हम तो सो रहे हैं, हमें तो काम करना है भी, और खाने पकाने कुछ करना, लोग क्या कुछ कर रहे हैं। गुजराती ज़ुबान की जो ग्रामर है ना, वो एक जर्मन ने लिखी थी। क्यों? क्योंकि उसने बाइबल का गुजराती ज़ुबान में ट्रांसलेशन करना था। अब कैसे करे? पहले उसने गुजराती ज़ुबान समझी, उसके रूल्स वज़ा किए, पूरी ज़ुबान लोगों को सिखाई, फिर उस ज़ुबान में अपनी बाइबल का तर्जुमा करके छापा। हाँ, वो तो कहते लो छोड़ो, ज़रूरी है गुजरातियों को भी क्रिश्चियन करें। ये वो गुजराती नहीं जो पाकिस्तान के गुजरात की है, जो असल गुजरात की लैंग्वेज है, वो फ़र्क है हमारी ज़ुबान से। तो बहरहाल बात का खुलासा क्या है कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ये नबी अपनी मर्ज़ी से नहीं बोलता।